आप अपने आप को किस तरफ से खूबसूरत समझते हो। तो फिर उनकी कॉल आई ह्यूस्टन से और उन्होंने कहा नहीं आमिर सही कहता है, वो वाकई बहुत खूबसूरत आदमी है।
कुछ बेसिकली मैंने सुना था जैसे कि औरत से जेलेसी ज्यादा करती है ना, लेकिन मुझे कल पता चला कि टोरंटो में ऐसे कई भाई हैं जो मुझसे जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। आके लाइव कहते आप कौन से खूबसूरत आदमी है,
कौन से एंगल से
खूबसूरत, याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ अपनी बुराई भी भूल गया। हाँ ये उन्होंने कहा था कि आप किस एंगल से खूबसूरत दिखते हैं।
हाँ।
भाई है ना वाइड एंगल से देखते टेलीस्कोपिक लेंस लगाए देखें
या 90 एंगल से देखें, 90 डिग्री एंगल से
लेंस लगाए तो चांद दूर से दिखते हैं।
हाँ, क्योंकि ये तो चांद है ना, ये चांद है, ये दूर से टेलीस्कोप लगा के नजर आएगा,
करीब से ना देखें,
ना देखें आंखें आपकी चुंदिया जाएंगी, खूबसूरती आप सह नहीं सकेंगे,
सह नहीं सकेंगे, बिल्कुल नहीं सह सकेंगे,
बिल्कुल
नहीं। ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहेगा,
बढ़ता रहेगा। चलो ठीक है, हम जरा खबरें
खबरें पकड़ लेते हैं।
आज जो है
हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट जो है वो शुरू होने वाला है।
हाँ बिल्कुल वो है, तो इसलिए अब हम जल्दी से आपको सुनाते हैं जी खबरें। तो सबसे पहले तो जनाब पायल ज्वेलर्स, अगर आपके पास, सॉरी भाई मैं हम जरा बीमार शिमार है तो प्लीज हमें थोड़ा बर्दाश्त कर ले एक दो दिन। ये जनाब पायल ज्वेलर्स जो है इनके पास दुबई और सिंगापुर से ज्वेलरी आती है, बड़ी खूबसूरत है। ये कहते हैं जी वी आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन। तो आप कोई भी आपका इम्पोर्टेंट कोई इवेंट है फैमिली का या कोई और तो आप अटेंड कर सकते हैं इनका जो है दुकान, यानी कि इनकी दुकान पे आप जा सकते हैं और वहां पे खूबसूरत किस्म की जो है चीजें आप लेकर आ सकते हैं। इनका नंबर है 9057907879। इसके अलावा जी विलेज टेस्ट ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, और यहां पे वो कहते हैं जी फैसल चड्ढा साहब के मेरे दो जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, एक उनका है मिसिसागा में तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, और 4141 डिक्सी रोड पे है 9052323663, और दूसरा है जनाब ओकविल के अंदर, इट इज लोकेटेड एट 2294 लेक शोर रोड वेस्ट। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं मिसिसागा में एट 9052323663 और ओकविल में 9052262294। और जनाब डॉक्टर फियाज कुरैशी, डॉक्टर फियाज कुरैशी जो हैं ये हर तरह की आपको डेंटिस्ट्री की सर्विसेज देते हैं। इनके दो जो क्लिनिक्स हैं वो मिसिसागा में हैं, उसका नंबर है 9052325678, और एक जो है स्कार्ब्रो में है और उसका नंबर है 4167579999। ठीक है जी, तो आपने कहना। अच्छा जी हम आपके साथ अब शुरू करते हैं खबरें। आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो अगेन बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और प्रीमियर डक फोर्ड साहब जो हैं उनके ऑफिस से आज एक प्रेस रिलीज आई है कि ये जो कार्लटन से जो एमपीपी हैं गोल्डी घमारी सिंस 2018 ये वहां से विन कर रही थी, इनको पीसी कॉकस जो है उससे निकाल दिया गया है। अच्छा ये जो है काफी अरसा न्यूज में रही हैं, आपको पता है कि इससे पहले भी नवंबर में जो था इनके ऊपर आया था और इन्होंने बड़ी ही एंटी मुस्लिम रेट्रिक्स जो हैं वो सामने लेकर आई थी, और इन्होंने बल्कि बड़ी खतरनाक बात की थी। इन्होंने कहा था जी कि ये जिस वक्त अल्लाह अकबर कहा जाता है तो इसको सेफ्टी कंसर्न आपको समझना चाहिए। तो उस वक्त भी नेशनल काउंसिल ऑफ कनेडियन मुस्लिम्स जो है उन्होंने डकफोर्ड साहब को कहा था कि भई आप इनको जरा जो है थोड़ा सा मतलब है कंट्रोल करें ये किस तरह की बातें करते हैं, और डकफोर्ड साहब इनके साथ उस वक्त खड़े रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बहुत ही स्ट्रांग एंटी इस्लामोफोबिया वॉइस है और हमारा तो जीरो टॉलरेंस है इन चीजों के लिए, एंटी सेमेटिसिज्म है या कि इस्लामोफोबिया उसकी कोई जगह ऑन्टेरियो में नहीं है। अब जो है चीजें जरा ज्यादा भड़क गई हैं। अब आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एक तस्वीर डाली एक ब्रिटिश फार राइट एक्टिविस्ट हैं टॉमी रॉबिन्सन के साथ, जो कि इंतहाई एंटी इस्लाम किस्म का आदमी है और बहुत ज्यादा रेसिस्ट स्लर्स जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, और ये उससे मिली और तो उसके ऊपर फिर जो नेशनल काउंसिल ऑफ कनेडियन मुस्लिम्स है उन्होंने फिर से फोर्ड साहब को कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ बातें करती है और आप तो कहते हो कि हमारी इसके लिए इस्लामोफोबिया के लिए जीरो टॉलरेंस है, तो ये क्या चल रहा है भाई। तो उसके ऊपर आज फिर जो है फोर्ड साहब ने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही हार्ड किस्म का डिसीजन है मेरे लिए, इजी बिल्कुल नहीं है, तो लेकिन ये जो है अब हमारे पीसी कॉकस के अंदर नहीं रह सकती। अब उसका जवाब जो है घमारी साहिबा ने वो ये दिया है कि जिस वक्त मैं इसको मिल रही थी टॉमी रॉबिन्सन को, तो मुझे पता नहीं था कि ये किस तरह का आदमी है, इसकी किस तरह की हिस्ट्री है। मैं तो एज कनेडियन इरेनियन कनेडियन नेशनलिस्ट को मिल रही थी, क्योंकि जो इरेनियन रिजीम है उसके बड़े जुल्म है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, तो उस सिलसिले में मैं इनसे बात करना चाहती थी। यानी आप सोचें कि हम आपको जो ये खबरें यहां पे देते हैं, हम सोशल मीडिया से नहीं उठाते हैं या ऐसे ही कोई इधर उधर से हम नहीं उठाते हैं, बड़ा सोच समझ के कि भाई किस मीडिया हाउस से हम उठा रहे हैं। और ये एक एमपीपी है, एक जिम्मेदार खातून है, तो जब किसी शख्स से मिल रही थी तो उन्होंने उसका बैकग्राउंड ही नहीं चेक किया कि भाई ये कौन है कौन नहीं है। तो मतलब यानी कि अगर आप किसी मेले ठेले में किसी से मिले हो ना, तो कोई आपको कहे जी आप तस्वीर खिंचा लो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर कोई आपके ऑफिस में आके मिल रहा है तो आप जरूर अपने स्टाफ को बोलेंगे कि भाई जरा फाइंड आउट करो कि ये कौन बंदा है या कौन मेरे से आके मिल रहा है। बहरहाल जी, इसीलिए उन्होंने कहा जी कि इनका बड़ा लैप्सिस है, मेजर लैप्सिस थे इन जजमेंट, तो एज अ रिजल्ट ये अब हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती और इनको जी अब निकाला गया है। तो भाईजान पहले आप सो रहे थे फोर्ड साहब, आपको पहले नहीं पता चला ये कितनी गंदी बातें मुसलमानों के बारे में कर रही थी। तो ऐसे आज जनाब स्टैट्स कनाडा की एक खबर आई है और उसके मुताबिक कनाडा की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रीबाउंड की है अप्रैल के अंदर। और स्टैट्स कनाडा का कहना है कि लेकिन ये जो रीबाउंड हुई थी अप्रैल में, ये मई में उसका मोमेंटम जो है मेंटेन नहीं कर सकी। जीडीपी जो थी अप्रैल में ग्रो की थी 0.3% से, लेकिन मई में आते आते वो जो है स्लो हो गई 0.1%। और इन्फ्लेशन जो थी वो मई के महीने में ऊपर चली गई 2.9% पे, कंपेयर्ड विद 2.7% इन अप्रैल। और ग्रोथ जो इन इकोनॉमी जो अप्रैल में थी वो इसलिए आई थी कि 20 सेक्टर्स में से जो 15 सेक्टर्स थे गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर्स में, उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी। जो सर्विसेज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री थी उसके अंदर ग्रोथ 0.3% आई थी, और होलसेल ट्रेड इंडस्ट्री जो थी उसके अंदर उछाल आया था 2% से अप्रैल के अंदर। और रिटेल ट्रेड जो है उसमें भी गेन्स आए थे 0.5% से। तो इस तरह से जो है ये चीजें जो है कोई अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो है बैंक ऑफ कनाडा अपने रेट्स बनाता है। और अब जो जुलाई के अंदर आ रही है बैंक ऑफ कनाडा की फिर से रेट्स की जो ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स की जो अनाउंसमेंट, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ कम करेंगे, तो वो उतना ही रखेंगे मेरा ख्याल है, ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है कि जो 10,000 एलसीबीओ के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। क्राउन कॉरपोरेशन ने आज ये अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो 14 दिन तक इनके जो रिटेल स्टोर्स हैं वो बंद रहेंगे अगर इनके बीच में डील जुलाई 5 को ना हो गई। उन्होंने कहा जी सिर्फ 30 ऑफ आवर 669 स्टोर्स विल ऑपरेट, और ये जो है फ्राइडे सैटरडे और संडे को लिमिटेड आवर्स में ऑपरेट करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि हमारी निगोशिएशन जो है वो चल रही है ऑन्टेरियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन के साथ। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जी आपने जो फोर्ड गवर्नमेंट ने एक्सपैंड कर दी है अल्कोहल के सेल्स, तो उसके ऊपर हमारी जरा इनके साथ लड़ाई है, क्योंकि जाहिर है कि अब इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए हैं, तो इसकी उनको जो है वो तकलीफ है। ये जो वीकेंड आ रहा है जी, ये लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, कैनेडा डे लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि 1 जुलाई को कैनेडा डे मनाते हैं। तो जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है इसमें टोरंटो डाउनटाउन अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो भाईजान बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी परेड्स हैं। एक तो कनाडा डे की परेड्स हैं, प्राइड परेड है, फिर वहां पे जो है फायरवर्क्स भी हैं। तो स्टार्टिंग टुडे यानी कि फ्राइडे से चर्च स्ट्रीट जो है वो फुली क्लोज्ड है ट्रैफिक के लिए, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ डंडस स्ट्रीट ईस्ट टू साउथ ऑफ हेडन स्ट्रीट, वेजली स्ट्रीट ईस्ट, और इसके अलावा क्लोज है ये यॉन्ग स्ट्रीट टू जॉर्विस स्ट्रीट। और थाउजेंड्स जो है वो अब इधर जमा हो जाएंगे मंडे के दिन फायरवर्क्स देखने के लिए एट एच ब्रिजेस बे। और जो एनफोर्समेंट वाले हैं यानी कि जो पुलिस है वो कह रही है कि भाई ये जो पार्किंग है ये बिल्कुल उसमें आपको जगह नहीं मिलेगी, तो काफी आपको डिलेज भी मिलेंगे आपके लेक शोर बुलेवार्ड के ऊपर। तो इसलिए बेटर यही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें और आप अपनी गाड़ियों के ऊपर ना आए। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि अल्कोहल और पर्सनल फायरवर्क्स जो है वो बिल्कुल लेकर आप बीच के ऊपर नहीं आएंगे। वाटर फ्रंट जो है उसको भी पार्शली क्लोज किया जाएगा। हार्बर फ्रंट सेंटर जो है उसके पास जो वॉकवे है उसको भी बंद किया जाएगा ताकि वहां पे जो दो कॉन्सर्ट्स हैं, एक आज रात को और एक सैटरडे को कल है, तो उसके लिए ये जगह सारी जो है खाली रखी जा रही है। तो अगर इस वीकेंड पे आप जाने का सोच रहे हैं टोरंटो, तो आप मेरा ख्याल है कि अपना जरा मिस ही करते हैं जाना वहां पे। सीआरए जो है वो अब कह रहा है कि जो पेंडेमिक के जमाने में हमने पैसे दिए थे खुले खुले और लंबे लंबे, वो अब हम जो है बहुत ज्यादा ओवर ड्यू है पेमेंट्स, तो अब हम उनको लेने की कोशिश करेंगे। सीआरए का कहना है कि इनको $9 बिलियन जो है वो रिकवर करना है स्टार्टिंग जुलाई। वो अपना जो है अब लीगल वार्निंग्स जो है देना शुरू कर देंगे उन लोगों को जिनको के पहले कहा गया था कि भाई पैसे वापस करो और उन्होंने पैसे नहीं मोड़े थे। तो अब जो है ये पैसे लिए जा सकते हैं उनकी तनख्वाहों से या उनके बैंक अकाउंट्स में से। और वो कहते हैं जी कि ये तमाम लीगल एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जिनको लेटर भेजा गया था और फिर उन्होंने रिस्पॉन्स कोई भी नहीं दिया था। 200 बिलियन के करीब पेंडेमिक रिलीफ पेमेंट्स दी गई थी और ये लोगों को और बिजनेसेस को उस वक्त दी गई थी जिस वक्त उनसे पूछा गया था कि क्या उनके जो बिजनेस आवर्स हैं वो कम हो गए हैं या बिजनेस कम सॉरी वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं और बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में फिर ये दिए गए थे। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि तकरीबन 9.53 बिलियन उन लोगों को दे दिए गए हैं जो कि इन एलिजिबल थे, इंक्लूडिंग 5.41 बिलियन फॉर कैनेडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट जिसको कि सर्ब भी हम कहते थे, 2.67 बिलियन फॉर कैनेडा रिकवरी बेनिफिट एंड 1.25 बिलियन फॉर कैनेडा रिकवरी केयर गिविंग बेनिफिट। तो ये सारे इन्होंने रिकवर करने हैं और रिकवरी जो है इन्होंने शुरू की थी मई 2022 को, तो अब जो है 2 साल हो गए हैं, तो वो कहते हैं जी लोगों को पैसे अब वापस कर ही देने चाहिए। एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड का आज आया है साउथ पेरू का जो एरोक्विका का एरिया है वहां पे, और वैसे तो कोई डेथ्स जो है यहां पे रिपोर्ट नहीं की गई है लेकिन 8 लोग इंजर जरूर हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि इनमें से जो 5 हैं उनको नियर बाय हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, बाकी जो है शायद उनकी माइनर इंजरीज हैं। इसके बाद ये जो अर्थक्वेक आया उसके बाद एरोक्विका पे 4 आफ्टरशॉक्स आए जिनका के मैग्नीट्यूड था 4 से 4.6 था, और उसके बाद बेशुमार लैंडस्लाइड्स भी हुई जिसकी वजह से लोकल रोड्स जो हैं वो भी काफी टूटी और खराब हुई। तो ये जो ऐसे है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जनाब ट्रंप साहब और बाइडन साहब के बीच में फर्स्ट डिबेट होने वाली है, तो रिपब्लिकन ट्रंप साहब और डेमोक्रेट बाइडन साहब जो हैं उनके बीच में ये जो डिबेट हुई उसमें पता चला कि बाइडन साहब जो हैं एक तो उनकी आवाज भी काफी ब्रिटल थी और फिर वो कोई अपना फोर्सफुली केस जो है वो भी नहीं लड़ सके, तो बिल्कुल ये लग रहा था कि ही इज नॉट फिट फॉर द ऑफिस। हालांकि उनके पास काफी मौके भी थे लेकिन यही लोगों का देखना था कि क्या वो एजाइल है, क्या उनके अंदर एनर्जी है, जो कि बिल्कुल उनके अंदर नहीं नजर आई, बल्कि इनके इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे वो डिसऑरियंटेड नजर आए। ट्रंप साहब जो हैं वो 78 ईयर्स के हैं और कुछ साल ही छोटे हैं बाइडन साहब से, लेकिन काफी शार्प नजर आए। और इस दफा 2020 में जिस तरह के वो डिबेट में बार बार बाइडन साहब को रोकते थे और उनको इंटरप्ट करते थे, इस दफा उन्होंने काफी बिहेव किया और बिल्कुल उनको रोका नहीं और बड़ा उन्होंने जो है वो अच्छा बिहेवियर दिखाया जिसमें कि लगा कि जी ये प्रेसिडेंशियल बिहेवियर जो है वो हो सकता है। हालांकि जो मॉडरेटर था उसने काफी दफा ट्रंप साहब को रोका क्योंकि वो काफी ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने ज्यादा इनको रोका नहीं बाइडन साहब को। लेकिन जाहिर है कि बीच बीच में से ट्रंप साहब ने झूठ भी बोले, उन्होंने कहा जी कि मेरे जमाने में यूएस बॉर्डर जो था वो सेफेस्ट था, और जबकि डेटा जो है वो ये बताता है कि बाइडन साहब और ओबामा साहब के जमाने में जो है सेफेस्ट था, इनके जमाने में तो काफी मुश्किल रहा, यानी सेफेस्ट तो नहीं सेफ थोड़ा सा था कंपैरेटिवली, इनके जमाने में भी इलीगल जो थी वो चलती रही थी इमिग्रेशन, तो इतना कोई सेफ नहीं था। लेकिन बाइडन साहब जो थे उनके पास बहुत सारे मौके थे इनके गलतियां पॉइंट आउट करने के लिए, खास तौर पे इनके ऊपर वो जो क्रिमिनल कन्विक्शंस आई हैं ट्रंप साहब पे उसके ऊपर वो काफी ज्यादा बात कर सकते थे लेकिन उन्होंने कोई बात भी नहीं की। फिर जो ये इन्होंने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बड़े चैंपियन बनते हैं उस चीज को हाईलाइट नहीं किया, और फिर जो ये कहते थे कि मैंने प्रॉमिस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दूंगा फॉर अबॉर्शन उसके ऊपर बात कर सकते थे, उसके ऊपर मतलब डिसऑरियंटेड से नजर आए कल की डिबेट में बाइडन साहब को, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो बहुत ही बैड इंप्रेशन कल बाइडन साहब ने छोड़ा कंपेयर टू ट्रंप साहब। इंग्लैंड सॉरी यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने 200 जो लोग हैं उनको चार्ज किया है इन नेशन वाइड क्रैकडाउन ऑन हेल्थ केयर फ्रॉड स्कीम्स। यूएस जो अटॉर्नी जनरल है मैरिक गार्लैंड, उन्होंने कहा है जी कि ये 2.7 बिलियन डॉलर्स के फॉल्स क्लेम्स जो थे गवर्नमेंट को डाले गए थे और इसके अंदर शामिल हैं डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी का स्टाफ। 900 मिलियन स्कीम्स जो थी एरिजोना के अंदर इन्होंने फ्लोट की थी फॉर डाइंग पेशेंट्स, जिसमें के ज्यादा से लोग जिनके के पास ये स्कीम पहुंची भी नहीं थी और उनकी डेथ्स हो गई थी। इसके ऊपर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड ने कहा कि चाहे आप ड्रग ट्रैफिकर हैं या ड्रग कार्टल से आपका ताल्लुक है या कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव हैं या मेडिकल प्रोफेशनल हैं, अगर आपने अनलॉफुली जो है कंट्रोल्ड सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको पकड़ना जरूरी है। एरिजोना के अंदर प्रोसिक्यूटर्स जो थे उन्होंने असल में एक्यूज किया था कि दो ओनर्स ऑफ वूंड केयर कंपनीज जो थी उन्होंने एक्सेप्ट किए थे 330 मिलियन इन किकबैक्स फॉर स्कीम टू बिल मेडिकेयर फ्रॉजुलेंटली फॉर एम्बियोटिक वूंड ग्राफ्ट। अब ये एम्बियोटिक वूंड ग्राफ्ट क्या होती हैं? ये ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा गहरे वूंड्स होते हैं उनके ऊपर की जाती हैं और उसके अंदर जल्दी हीलिंग आती है क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं और चीजें होती हैं। तो ये आम पट्टी नहीं होती, ये बहुत ही हाई एंड मेडिकल पट्टी होती है जिसमें बहुत सारी दवाइयां होती हैं और वूंड्स बहुत जल्दी हील होते हैं। तो वो कहते हैं जी कि दो साल में 900 मिलियन बोगस क्लेम्स जो थे वो मेडिकेयर को दिए गए थे फॉर लेस देन 500 पेशेंट्स जो कि सब झूठ थे और उसमें उन्होंने ये इतने लंबे पैसे कमाए हैं। तो वह उसके लिए आज 200 लोगों को जस्टिस डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। ऋषि सुनक साहब जो हैं वो जरा काफी उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हर्ट और एंग्री फील कर रहा हूं क्योंकि जो रिफॉर्म यूके के जो हेड है नाइजल फराज उन्होंने बड़ी गंदी किस्म की जबान जो है इनके लिए यूज की और रेशल स्लर्स इनके ऊपर डाले। एक टीवी के इंटरव्यू पे बात करते हुए ऋषि सुनक साहब ने कहा कि जिस वक्त ये बातें कर रहे थे तो मेरी बेटियां जो कि इनके लिए बड़ा काम इनकी पार्टी के लिए रिफॉर्म यूके के लिए करती रही हैं वो सुन रही थी तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने बड़ा हर्ट फील किया और इन्होंने खुद भी वो वर्ड्स जो हैं गंदे किस्म के वो रिपीट किए। जब टीवी के एंकर ने पूछा कि आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं आप क्यों इनको रिपीट कर रहे हैं वर्ड्स को, उन्होंने कहा मैं डिलिबरेटली इनको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग भी सुने जिन्होंने नहीं सुना कि नाइजल ने मेरे बारे में क्या बातें की हैं। और उन्होंने कहा जी कि अगर रिफॉर्म के जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर इतनी गंदी रेसिस्ट और मिसियोनोजिस्टिक जो लैंग्वेज अगर यूज की जा रही है तो आप खुद समझें कि रिफॉर्म पार्टी का अंदर का कल्चर क्या है। उन्होंने कहा जी मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक बाप भी हूं दो जवान बच्चियों का और मुझे लगता है कि ये इस तरह का डिविसिव बिहेवियर जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मैंने तो ये देखी है बातें जो नाइजल फराज ने की, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आपको भी अफसोस होगा एक प्राइम मिनिस्टर के लिए और मतलब एक सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर इस तरह की गंदी लैंग्वेज, तो मुझे तो लग रहा था जैसे हमारे पाकिस्तान का कोई लीडर जो है वो बात कर रहा है। तो बहुत ही भद्दी किस्म की लैंग्वेज उन्होंने यूज की ऋषि सुनक साहब के लिए। टाइम्स ऑफ इसराइल जो है जी उसकी आज एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है और उसके मुताबिक इजिप्ट और यूएई जो है उन्होंने आज हामी भरी है कि वो पोस्ट वॉर गाजा के अंदर जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बिठाएंगे। अब ये जो है ये तो जनाब बड़ी अब खतरे की बात है क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब उनकी मुलाकातें हुई थी यूएई के जो लीडरशिप है और इजिप्ट के लीडरशिप के साथ अभी जो रिसेंटली इधर आए हुए थे रीजन के अंदर और सारे अपने अरब एलाइज जो हैं उनके साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था जी कि गाजा में बहुत ज्यादा तबाही आई है तो आप उसको मैनेज करेंगे यानी कि आप तुसी पैसे लाओ तबाही असी ले आइए पैसे तुसी उन लाओ उस ठीक करण में चाहे जी हमने दबा दब असला दिया इसराइल को कि बर्बाद करो गाजा को लेकर अब उसको रिकंस्ट्रक्ट तुम अपने पैसे पे करो है ये मतलब है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कहानी आके सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये सारे जो है राजी हैं क्योंकि उन्होंने आपको पता ही है अभी रिसेंटली दो हफ्ते पहले विजिट किया था कतर का इजिप्ट इसराइल जॉर्डन का और फिर यूएई में भी इनकी मुलाकातें हुई थी। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे समय सपोर्ट है कायरो की और अबू धाबी की और वो कहते हैं कि हम इसमें रिकंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन लेकिन जो अंदर की खबर जो रिवील की है टाइम्स ऑफ इसराइल ने वो ये है कि वो उन्होंने कहा जी कि यूएई और इजिप्ट करने को तो ये तैयार हैं खासतौर पे यूएई पैसे लगाने को तैयार है लेकिन दोनों ने ये इनको कहा है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को कि एक फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट कायम जरूर होनी चाहिए और इजरायली फोर्सेस कंप्लीटली विदड्रॉ करेंगे गाजा से तो फिर हम आपके प्लान के ऊपर बात करेंगे। अब ये जो बात है ये नतन्याहू साहब मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं तो अब ये इसको आगे कैसे लेके जाया जाएगा ये आप खुद ही समझें। बहरहाल हौले हौले कर्टन के पीछे यूएई जो है ना आजकल कुछ ज्यादा ही मोहब्बत दिखा रहा है इसराइल को भी और यूएसए को भी कि भाई पाईजान असि थोड़े नाल खड़े हैं सारी तरफ देखना नहीं बस। तो अब आप एक कुछ लोग इसको समझदारी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। इसके साथ साथ जो सऊदी अरेबिया है जी उसके बारे में भी खबर आई है कि वो भी अब जरा चाइना के थोड़ा पास होता जा रहा है और चाइना को उसने कहा जी कि ये जो हूथीज हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं इसको रोकने के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। आपको बताइए कि हूथीज जो है उनके बारे में कहा जाता है कि दे आर अलेजली सपोर्टेड बाय ईरान, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं है। बहरहाल ये कहते हैं और यूएस भी कहता है कि हूथीज को ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। सऊदी जो डिफेंस मिनिस्टर थे खालिद बिन सलमान और इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान भी थे जो थे, उनकी मुलाकातें हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से और उसके अंदर इन्होंने कहा था जी कि ये जो यमनी ग्रुप है ये कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है सऊदी पोर्ट्स के ऊपर, जो हमारे जहाज आ रहे हैं हमारे डॉक्स के ऊपर और डॉक कर रहे हैं या कि हमारे पोर्ट्स से जा रहे हैं उनके ऊपर, जिसकी की वजह से रीजन के अंदर जो है बड़ी खलबली है, तो इसको आप रोकने में हमारी हॉल्ट करने में इन अटैक्स को हमारी मदद करें। आपको पता ही है कि चाइना ने इससे पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा बहुत अरसे से जो लड़ाई शुरू हुई हुई थी उसके बीच में जो है इनकी दोस्ती कराई थी और ये जो दोनों रीजनल हैवी वेट्स हैं इनके बीच में कहा था कि भाई आप झगड़ा खत्म करके ट्रेड और जरा प्यार मोहब्बत से यानी कि रो इधर, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया फिर से चाइना की तरफ देख रहा है कि क्या ईरान को अगर वो मना सकता है तो क्या हूथीज को भी वो मना सकता है यमन में, और अगर कर सकता है तो फिर वो सऊदी अरेबिया के हक में जो है वो रह सकता है। तो ऐसे अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे और नासिर शाह साहब जो हैं वो यहां पे होते हैं आपको पता ही है और बड़ी जबरदस्त वो कहते हैं जी $10 में हम आपको 8 आइटम्स देते हैं, तो जरूर प्लीज जाएं ओपन माइक कैफे पे और बहुत ही मजे मजे के यहां पे आप खाने एंजॉय का मजा ले सकते हैं। इनका नंबर है 416-526-6800 और जनाब राजा थे बादशाह जी आप वो कहते हैं जी आप होम और ऑटो का इंश्योरेंस अगर आपको अच्छे रेट पे लेना है तो आप मेरे साथ संपर्क करें हैं जी, तो आप राजा बादशाह को कॉल कर लें, ऑल स्टेट पे होते हैं। इनका नंबर है 6472903773 ठीक है जी। एंड जनाब साढ़े जड़े ने सुल्तान भाई होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे और बहुत जबरदस्त शैम्पेन कलर की अप्लायंसेस देते हैं और मार्केट से कर्म उनका रेट है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट के ऊपर वो होते हैं 9054502828 उनका नंबर है, आप उनको कॉल कर लें जी अगर आपको कैसा भी चाहिए। ओके अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली है उसने आज बड़ा ही टैक्स हैवी जो फाइनेंस बिल है 2024 उसको आज मंजूर किया है क्योंकि ये चाहते हैं कि IMF से और पैसे ले सकें। बजट जो था फॉर फिस्कल ईयर 2024-25 विद अ टोटल आउटले ऑफ 18.877 ट्रिलियन रुपीज इसको अनवेल किया था फेडरल गवर्नमेंट ने दो वीक्स पहले और इसके ऊपर जो है ऑपोजिशन पार्टीज का बहुत ही हार्श किस्म का क्रिटिसिज्म आया था और खासतौर पे पीपीपी बड़ी नाराज हो गई थी, फिर पीपीपी को मनाया गया था, फिर पीपीपी ने जो है अब जो है वो उसकी फिर जो भी उनकी रिजर्वेशन थी वो की थी और उनको पूरा किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब जो है उन्होंने आज नेशनल असेंबली में जब ये फाइनेंस बिल पेश किया तो पीपीपी ने आज इसको एंडोर्स किया, उसकी वजह से ये मोशन जो थी मेजोरिटी वोट के साथ आज नेशनल असेंबली में पास हुई और इसके जो बहुत सारे जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज थे उन्होंने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स मांगे थे लेकिन उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक उन्होंने आज एक लाइव टीवी टेलीकास्ट में अनाउंस किया कि ये बिल जो है वो पास हो गया है जिसमें गवर्नमेंट ने सेट किया है बड़ा ही चैलेंजिंग टैक्स रेवेन्यू टारगेट ऑफ 13 ट्रिलियन रूपीज फॉर द ईयर स्टार्टिंग July 1st और इसके अंदर 40% जो है टैक्सेस को ऊपर रखा गया है और पाकिस्तान जो है वो अब IMF से चाहता है 6 to 8 billion $US के लोन, जिसकी वजह से जाहिर है कि टैक्सेस उसने बेताजा बढ़ा दिए हैं और पाकिस्तान जो है उसने बड़ी खुशी का इजहार किया है कि जी हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.9% ऑफ GDP आ गया है विच इज अ बिग 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 थिंग। तो वैसे तो एक तरफ तो अच्छी चीज है लेकिन दूसरी तरफ आप वो कैसे कम कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, तो परेशानी है आम लोगों के लिए। इसके साथ साथ आज सिंध असेंबली जो है जी उसने भी अपना जो सिंध असेंबली का बजट है उसको अप्रूव किया है द ट्यून ऑफ 3.05 ट्रिलियन रुपीस फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। इसका जो अनाउंसमेंट है वो आज सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह ने किया, इसके साथ साथ सिंध फाइनेंस बिल वैल्यूड एट 76 बिलियन रुपीज उसको भी इन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा जी कि अगर आप इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते थे तो हमने आपको 14 डेज दिए थे करने के लिए। अपोजिशन क्योंकि खड़ी हो गई और उसने कहा जी आपने हमसे बात क्यों नहीं की, जिस पे कि कायम अली शाह मुराद अली शाह साहब ने कहा जी आपको मैंने अभी कहा है कि आपके पास 14 डेज थे, चूंकि हमारी 14 डेज के अंदर कोई भी आपके एतराज नहीं आए तो इसलिए हमने जो है अब इस बिल को पास कर लिया। इसके ऊपर अपोजिशन हो गई गुस्से, वो खड़े हुए, उन्होंने फाइनेंस बिल की कॉपियां फाड़ी और फिर वो असेंबली से निकल गए। एमक्यूएम ने जो है तकरीबन 1200 मोशंस दी थी टू कट न्यू बजटरी डिमांड्स, जो कि तमाम की तमाम रिजेक्ट कर दी गई थी इन अ मेजोरिटी वोट। पीटीआई के जो अलबत्ता मेंबर्स थे उन्होंने कोई भी सबमिट नहीं किए थे मोशंस, तो वो जो है आज असेंबली के अंदर बैठे थे। चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा बिल जो था ये था मेंबर्स की सैलरी बढ़ाने से और उनके जो एक्सपेंडिचर है उनको बढ़ाने से, जिसको कि ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था जी कि ये आप अपने खुद के जाती खर्चे जो है मत बढ़ाओ, और जिसको के रिजेक्ट कर दिया गया था कि जाहिर है जी ऐसी हम गवर्नमेंट भी चाहे मजे तेसी करने ने तो ये कह के जी ऐसे है। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी आज ऑपोजिशन के ऊपर काफी जो है वो किया, उनको काफी एतराज उनके ऊपर किया क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर जो बजट सेशन था वो काफी उसमें शोर हंगामा आता रहा, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी कि ये जो पीटीआई की बैक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लॉ मेकर्स हैं इनका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने क्यों जो है बजट के ऊपर इतना ज्यादा शोर हंगामा मचाया है। ये बजट की जिस वक्त वो अनाउंसमेंट कर रही थी अंडर द चेयर ऑफ स्पीकर मलिक अहमद खान, तो उसके ऊपर जो ऑपोजिशन थी वो एंटी पीएमएलएन जो है स्लोगन्स रेज करती रही, लेकिन फिर भी मरियम नवाज साहिबा जो है वो बात करती रही। इन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन गवर्नमेंट ने ना तो कभी अपनी अथॉरिटी अब्यूज की है और ना ही हमने कभी जो फैसिलिटीज हम देते हैं ऑपोजिशन के लोगों को उनको हमने खत्म करने की कोशिश की है, खासतौर पे वो लोग जो कि जेल के अंदर होते हैं। उन्होंने कहा जी कि फॉर्मर पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो तो सिर्फ अपना रिकॉर्ड इनकॉम्पिटेंस का ठीक कर रही थी और लोगों के एसी जो है प्रिजन्स में से रिमूव कर रही थी, लेकिन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के प्रेजिडेंट हैं हमने जो राइवल्स हैं उनके भी सेल्स जो हैं प्रिजन में उनके अंदर एक नहीं दो दो एसी लगवाए हैं, जैसे कि इमरान खान साहब का जो अडियाला जेल का सेल है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि दो एसी लगवाए जाएं। और उसने कहा जी कि पीटीआई हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती है, जिस वक्त मैं रोटी की प्राइस चेक करने के लिए तंदूर के ऊपर गई थी तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब वाहिद प्रोविंस है जहां पे कि रोटी की कीमत बहुत ज्यादा कम है। ये स्लोगन्स मेरे खिलाफ लगाने के बजाय आपको चाहिए कि आप भी यही वाला काम करें केपी के अंदर जहां पे कि आपकी गवर्नमेंट है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि हमने टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया है पंजाब में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट पीरियड, और पंजाब जो है उसमें लोगों ने इसीलिए जो है वो शुक्र का कलमा पढ़ा है और रिलीफ का जो है वो सांस भरा है, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए ऑपोजिशन ग्रुप ने कहा। के इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने जी एक पिटीशन डाली है नेप्रा के पास फॉर सिग्निफिकेंट टैरिफ एडजस्टमेंट्स, और उन्होंने कहा जी कि 15% डॉलराइज रिटर्न ऑन एक्विटी जो है हमको चाहिए है, 16.67% फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इन नेक्स्ट 7 ईयर्स अंडर मल्टी ईयर टैरिफ प्लान। पब्लिक हियरिंग के अंदर नेप्रा ने इनका व्यू किया के इलेक्ट्रिक का प्रपोजल फॉर फिस्कल ईयर्स 2023-24 एंड 2029-30, और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपके ऊपर टैरिफ्स लगाए गए हैं टैरिफ्स के प्रोविजन्स हैं ये कंटिन्यू किए जाएंगे, दैट इज 10.69 पर यूनिट टैरिफ जिसको कि इंक्रीज किया है फ्रॉम 34 रुपीज टू 44.69 पर यूनिट। इसके अलावा इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमको टैक्स कंसेशन चाहिए ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, और उन्होंने कहा जी कि हम जो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है वो कर रहे हैं तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट से थोड़ा हेल्प चाहिए। तो जनाब ये बातें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट की सेनेटर फैसल वावडा और एमक्यूएमपी के जो लीडर हैं मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि उन दोनों ने अनकंडीशनल अपोलॉजी की। वावडा साहब ने तो यहां तक कहा जी कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो आप मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि आपने जो वर्ड्स यूज किए थे वो इंतहाई इनअप्रोप्रिएट थे जुडिशरी के खिलाफ, और ठीक है हमने आपके खिलाफ ये जो कंटेम्प्ट का नोटिस था हमने विड्रॉ किया क्योंकि अब आपने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हम होप करते हैं कि आप भी हमारी रिस्पेक्ट करें। ये एक दूसरे को डिमीन करना पब्लिक के अंदर ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये बड़ा हार्मफुल जो है वो रुझान है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 लॉ मेकर्स जो है पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की भी बात कर सकते हैं और वो आपको आर्टिकल 66 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर अगर कोई आप बात करेंगे तो वो अनपार्लियामेंट्री समझी जाएगी और वो जो है आप आइंदा ना करें तो अच्छा रहेगा। दिल्ली के अंदर आज काफी बहुत सारी खतरे में नाक खबरें आती रही। सबसे पहले तो उनका जो लेटेस्ट और नया तरीन जो एयरपोर्ट है उसका कुछ हिस्सा टूट के गिरा, यानी राजधानी में दिल्ली में एयरपोर्ट का वो भी हिस्सा इन द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कलैप्स कर गया। और ये देखें जो हमारा टीवी देख रहे हैं आप देखें जरा कि किस तरह से ये जो है गार्डर गिरे हैं और उसका उन्होंने कहा जी कि हैवी रेन पाइजन जितनी हैवी रेन जितने आंदियां और सारा कुछ डिगना शुरू हो जाए तो पाइजन किस तरह चलेगा। और आपको पता ही है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही ये जो टर्मिनल 1 था एयरपोर्ट का ये मोदी जी ने खुद ही इनॉग्रेट किया था, मार्च का महीना था शायद, मार्च के महीने में उन्होंने किया था जनरल इलेक्शन से जस्ट थोड़ा पहले। तो उसकी वजह से एक आदमी की डेथ हुई है और 8 लोग गंभीर अंदाज में जख्मी हो गए हैं और ये जो जॉइंट स्टील गर्डल्स थे ये गिरे हैं वहां पे, तो जिसकी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद जी जो यहां पे ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स का एरिया था तो यहां पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो थी उनका अराइवल और जो है डिपार्चर भी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जो बाकी जो टर्मिनल्स थे उसके ऊपर नॉर्मल से ऑपरेशंस चलते रहे। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो है बारिशों के साथ साथ बेतहाशा गर्मी भी पड़ रही है। बारिशों ने तो खैर 88 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, लेकिन गर्मी जो है उसने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी अप्रैल से जून के महीने में यहां पे बेतहाशा डेथ्स हुई हैं। गवर्नमेंट कहती है 30 डेथ्स हैं, लेकिन जो बाकी लोग जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने वाले हैं वो कहते हैं जी 30 से बहुत ज्यादा जो है डेथ्स हुई हैं बेतहाशा गर्मी की हाई टेम्परेचर जो हैं जो कि 40 डिग्री से ऊपर चले गए हुए हैं। और वो कहते हैं जी कि इतनी डेथ्स और इतनी गर्मी जो है पिछले कई सालों में नहीं पड़ी है। इसके साथ साथ तीसरी जो आफत आई हुई है इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से यहां पे आग लग गई है बहुत सारे इलाकों के अंदर दिल्ली के अंदर। तो अप्रैल से जून के बीच में ये जो आगें लगी हैं वो जो है वो कहते हैं जी कि डबल हो गई हैं फ्रॉम 2023 और जो कॉल्स आई हैं इनको वो 9000 फायर्स की कॉल्स आई हैं दिल्ली के अंदर, फायर यानी डिपार्टमेंट को कि आके भाई आग बुझाओ आग लग गई है यहां पे। तो दिल्ली के हालात खराब हैं आजकल बहुत ज्यादा। आज दूसरे दिन भी जो टीएमसी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि एमएलएज हैं असायंतिका बयोंदी पते और पांड्या और रायत हुसैन जो हैं रायत हुसैन सरकार वो असेंबली की सीढ़ियों पे ही कोलकाता के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि गवर्नर साहब जो हैं हमें ओथ देने को तैयार नहीं है। गवर्नर सीवी अनंता बोस जो हैं वो कहते हैं कि जिस वक्त तक आप राजभवन में नहीं आओगे मैं आपको ओथ दूंगा, जबकि ये दोनों कहते हैं कि हम असेंबली के अंदर ओथ लेना चाहते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम है आने के लिए तो आप डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को यहां पे भेजें हमें ओथ देने के लिए। और ये जो है अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने प्ले कार्ड्स लेके बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ ऑनरेबल गवर्नर फॉर ओथ कि हमको आके वो दें। इसके अलावा जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी वो जिस वक्त ये जो नीट पेपर लीक्स हुए हैं लोकसभा में जब उसके ऊपर बात कर रहे थे तो राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया। इसके ऊपर कांग्रेस ने काफी शोर मचाया और उन्होंने कहा जी कि हम पूछना चाहते हैं कि जब इसके ऊपर बात हो रही है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्यों बंद किया गया माइक जो है। तो उन्होंने एक स्पीकर ओम बिरला से पूछा, ओम बिरला ने कहा जी कि मैंने राहुल गांधी जी का माइक स्विच ऑफ नहीं किया है, मेरे कंट्रोल में कोई भी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त आप प्रेसिडेंट के एड्रेस के ऊपर बात करें और किसी मैटर पे बात ना करें। इसके ऊपर चीजें और भड़क गई। अब राज्यसभा में भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए आया। राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन थे जगदीप धांडेकर और लीडर ऑफ अपोजिशन मलिक अर्जुन खड़गे उनके बीच में भी काफी जो है वो हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज होता रहा क्योंकि अगेन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं वो नीट के ऊपर ही बात करना चाहते थे और उनको रोक दिया गया। और वो वेल के अंदर आ गए उसमें राज्यसभा में, तो उन्होंने जो है चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा जी कि आपने इंतहाई बुरी हरकत की है आज तक भी, यानी कि बिल्कुल सेंटर में पास आके जो बात की जाती है ना एकदम से माइक के, तो वो उस पे आ गए, तो उसको वेल कहते हैं। तो वो कहते हैं जी आपने इंतहाई गंदी हरकत की है, एंड यू हैव रियली स्टूप्ड सो लो, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जी मुझे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हो और आप इसको डिस्कस करने को ही तैयार। तो काफी मरामरी चल रही है जी वहां पे भी जो है। और जनाब हमने आपको बताया था कल्कि 2898 जिसमें कहते हैं बड़े बड़े सितारे बिग बी, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पाडुकोन, बड़ी ही जबरदस्त फर्स्ट डे, वो कल उसकी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो उसको लगाई गई थी, एक दिन में इस फिल्म ने 191.5 करोड़ कमा लिए हैं और लोगों को जो है ये फिल्म बड़ी जबरदस्त पसंद आ रही है। और इस फिल्म को बनाया है नाग एश्विन ने, तो इट इज डूइंग वेरी वेल। इसको रिलीज किया गया था तेलुगू, तमिल, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी के अंदर और तमाम ही जो लैंग्वेजेस में है ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। एक रिसेंट इंटरव्यू अभी दिया है फरीदा जलाल साहबा ने, आपको पता ही है कि पिछले वक्तों की बहुत बड़ी स्टार थी और एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी 1969 में आराधना, उसके ऊपर ये बात कर रही थी फरीदा जलाल। उन्होंने कहा शर्मिला टैगोर जो है जब भी कभी राजेश खन्ना या कोई भी मुझे डराने की कोशिश करता था तो शर्मिला टैगोर मुझे आके सपोर्ट कर लेती थी और कभी कभी राजेश खन्ना साहब जिनके आगे कोई नहीं बोल सकता था उनको भी डांट देती थी। वो कहती है जब मैं नई नई आई तो मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था और मैं डरती भी बड़ा थी इन बड़े बड़े सितारों से, तो मेरा एक रोमांटिक सॉन्ग था बागों में बहार है विद राजेश खन्ना, तो मुझे लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया कर सकूंगी, तो मैंने कहा मुझे थोड़े रिहर्सल्स चाहिए, तो उस पर राजेश खन्ना साहब बहुत भड़क गए, उन्होंने कहा तुमको कितने रिहर्सल्स चाहिए, तो कहती है मेरा मुंह लटक गया, तो रिंकू दी, क्योंकि ये शर्मिला टैगोर को रिंकू कहती थी, तो उन्होंने कहा जी रिंकू दी आ गई मेरे सपोर्ट के लिए और उन्होंने उनको कहा कि भाई ये बात करने का क्या तरीका है, वाई नॉट, जितने हमको रिहर्सल चाहिए 10 भी चाहिए होंगे तो भी हम करेंगे। तो वो कहती है वो डरती नहीं थी किसी से, ऐसा है वो जहर है, शर्मिला टैगोर ने किससे डरना था ऐसे। और जनाब मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है हिंदुस्तान के अंदर के पूजा एंटरटेनमेंट के हालात बहुत ही बुरे हैं। आपको पता ही है कि अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बहुत बड़े उसकी छोटे मियां बड़े मियां, तो इसके अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है तकरीबन 250 करोड़ का उसके ऊपर, तो अब उसमें लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई आपसे फिल्म के पैसे ज्यादा कौन मांग रहा है, अक्षय कुमार मांग रहे हैं या कि टाइगर श्रॉफ आपसे जो है वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने क्योंकि मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आई थी कि शायद अक्षय कुमार ने 165 करोड़ रुपीज जो हैं जो चार फिल्में इन्होंने बनाई थी पूजा एंटरटेनमेंट ने उनसे मांगी थी, उनके जो प्रोड्यूसर हैं सुनील दर्शन, तो सुनील दर्शन जो हैं वो अब सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अक्षय कुमार ने चार फिल्मों के लिए इतने पैसे नहीं मांगे, हां लेकिन ये फिगर जो है इट इज क्लोजर टू टाइगर श्रॉफ। माशाल्लाह, यानी कि ये बच्चा चार फिल्मों के लिए 165 करोड़ चार्ज कर रहा है, वाह 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 क्या बात है। पायल असी तो बड़े बेकार प्रोफेशन में बैठे हैं, चलो जी चलो असी भी कोई छोटा मोटा कुछ छोटे दा रोल कर लेने हैं यार इन्हां दी फिल्म दे विच जाके, चलो उधर चलो। तो ऐसा है जनाब। और जनाब माइकल वॉन कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, जैसे कि हमारे वो एक्सपर्ट आए थे वो आपको याद है अमिताभ सक्सेना, वो भी कहते हैं माइकल वॉन को बड़ी तकलीफ है इंडिया पाकिस्तान से, तो अब माइकल वॉन ने फिर कुछ कह दिया और उस पर हमारा पज्जी पाजी जो है हरभजन सिंह साहब बड़े वो जो है उसके ऊपर भड़क गए हैं। अच्छा जी अब हुआ क्या है, अब ये हुआ है कि माइकल वॉन जो है उन्होंने जब इंग्लैंड ने असल में 68 रन से जो है इंडिया ने जब 68 रन से इंग्लैंड को हराया एट प्रोविडेंस स्टेडियम इन गाना इन सेकंड सेमीफाइनल, तो उसके ऊपर वॉन साहब ने एक्स के ऊपर लिखा कि वाह वाह क्या बात है, ये बिल्कुल गाना को आपने सही चुना है क्योंकि एवरीथिंग इन दिस इवेंट इज गियर्ड टुवर्ड्स इंडिया व्हिच इज सो अनफेयर टू अदर्स। इंग्लैंड जो था वो विन कर सकता था अगर आप इस मैच को ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रिनिडैड के अंदर करते। अब सिंह साहब तो भड़क गए, पजी पाजी है आपको पता ही है, पजी का वैसे भी दिमाग थोड़ा खराब ही रहता है। पजी ने कहा कि जी गाना के अंदर दोनों टीमें खेल रही थी, इंडिया भी खेल रही थी और इंग्लैंड भी खेल रही थी, तो इंग्लैंड जो था उसने तो टॉस जीता था, उसके पास तो एडवांटेज था, तो इंडिया के पास तो ये एडवांटेज भी नहीं था, तो तुम जो है ना तुम सिली होना बंद करो और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि इंग्लैंड जो है उसको आउट प्ले किया इंडिया ने हर डिपार्टमेंट के अंदर। इस फैक्ट को तुम एक्सेप्ट करो एंड प्लीज मूव ऑन। और ये जो तुम रबिश बातें करते रहते हो ना हर वक्त, इसको करना बंद करो और लॉजिक बोला करो और नॉनसेंस मत बोला करो। ओ माय गॉड जी, व्हाट इज दिस? ठंडा पानी पियो तो सीवी ये है। और जनाब पाकिस्तान में हमारे इंजी भाई भी थोड़ा गर्म हो गए हैं रोहित शर्मा पे, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो एक लेजेंड को जो है वो ललकार दिया है। रोहित शर्मा साहब आप बड़े स्टार हो पर इंजी के लेवल के तो नहीं हो ना, क्या हो गया आपको है? बदतमीजियां वो भी लेजेंड के साथ। अच्छा जी, अब इंजी और रोहित जो है उसमें भी ठन गई। आपको पता ही है थोड़े दिन पहले इंजी ने कहा था, जो हमने कल सिकंदर बख्त साहब से भी पूछा कि उन्होंने कहा था जी कि ये बॉल जो है बड़ी अनरियल लग रही थी, क्योंकि ये 15th या 16th ओवर के अंदर रिवर्स स्विंग कर रही थी। इसका मतलब है कि रिवर्स स्विंग जो है उसके अंदर 12 से 13 ओवर में ही आ गई थी, जो कि हो नहीं सकती अनलेस एंड अंटिल उसको बॉल टेम्परिंग किया जाए, बॉल को टेम्पर किया जाए। तो ये बहुत ही सीरियस काम जो है मुझे लग रहा है कि ये बॉल के ऊपर किया गया है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं एम्पायर्स को कहता हूं कि जरा जिस वक्त ग्राउंड में होते हो तो अपनी आंखें खुला रखा करो। तो पहले तो रोहित ने कहा कि भाईजान हर कोई कर रहा था, लेकिन फिर रोहित साहब जरा जो है ना वो लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली और जरा बदतमीजी शुरू कर ली इंजी के साथ। तो उन्होंने कहा जी आपको क्या पता है रिवर्स स्विंग के बारे में, अब तो आप बाहर बैठे हो, ये है वो है। तो इंजी ने कहा भाईजान टीचर को मत टीच करो, जो मैं अक्सर आमिर को कहती हूं लेकिन आमिर बिल्कुल नहीं सुनता है, टीचर को टीच मत करो। क्योंकि रोहित ने कहा आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, तो इंजी ने कहा कि हम डेफिनेटली अपना दिमाग यूज करेंगे, क्योंकि अपना दिमाग ही यूज करते हुए हमें समझ आई है कि रोहित ने ये एडमिट किया है कि ऐसा तो कुछ हुआ था, तो अगर हमने भी वैसा ही कुछ ऑब्जर्व किया है तो फिर तो कुछ गलत नहीं है। और तुम मुझे जो है रिवर्स स्विंग के बारे में मत बताओ कि वो धूप में कैसे काम करती है और पिच के ऊपर कैसे काम करती है, क्योंकि हमने दुनिया को सिखाया था रिवर्स स्विंग करना, तो हमसे ज्यादा तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। मैंने तो सिर्फ इतनी ही बात की थी कि जरा एम्पायर जो हैं उनको आंखें खुली रखनी चाहिए। तो हाँ मैं कह दूं कि अगर एम्पायर्स भी अपना दिमाग यूज करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है पायन, खुश हो? ऐसे और जनाब स्टीवन फिन एंड एलेक्स हॉटली जो हैं उन्होंने बेतहाशा क्रिटिसाइज किया है T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में ट्रिनिडैड के अंदर हुआ था, जिसमें कि अफगानिस्तान को 56 रन्स पे आउट कर दिया गया था एट ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी। जो फॉर्मर इंग्लिश सीमर हैं फिन, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अगली किस्म का मैच था और ये थोड़ी थोड़ी देर में डिटेरियोरेट होता चला गया और इसमें कोई T20 की जो गेम है उसका थ्रिल या ग्रेट स्पेक्टेकल जो होता है वो शामिल नहीं था। ये जो चीजें हैं ये फैसिनेटिंग होती हैं। अगर आपके टेस्ट मैच चल रहे हैं तो पांचवें दिन अगर इस तरह से विकेट बिहेव करे नॉट इन T20, तो ये जो थी ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बड़ी अगली किस्म की ये थी। इसके साथ साथ इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनर जो हैं प्लेयर हॉटली, उन्होंने भी ये कहा कि जी हम इस मैच को मैच की तरह देखना चाहते थे, लेकिन आपने जिस तरह की गंदी विकेट बनाई हुई थी उसमें से तो बैटिंग जो थी वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई। बैटिंग नहीं, बैटिंग यानी कि जो बल्लाबाज था ना वो खेल नहीं सक रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि ये बैटिंग चूंकि बिल्कुल ही गायब हो गई थी तो इस गेम का बिल्कुल मजा नहीं आया। अगले अनुति आया ना जो जीते भाई साउथ अफ्रीका तो बड़ा मजा आया हूं तो नहीं मजा आया था की कीता जा सकता है। और जनाब फॉर्मर साउथ एशियन कैप्टन साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो है एबी डिविलियर्स, उन्होंने जनाब T20 के ऊपर उन्होंने भी जो है अपनी की है प्रेडिक्शंस किए हैं जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कल सैटरडे को मैच होने वाला है। उन्होंने कहा जी कि एडन मार्करम जो लड़के हैं साउथ अफ्रीका के, उनके अंदर टैलेंट है, स्ट्रेटजी है, डिटर्मिनेशन है कि वो T20 वर्ल्ड कप का टाइटल इस दफा जीत सकते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैज अराइव्ड और हम इसके लिए 33 ईयर्स से वेट कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे और फाइनली जो है साउथ अफ्रीका इसको विन करने का सोच सकता है। वो कहते हैं जी कि इंडिया की टीम में तो एक एक लड़का सुपरस्टार है, लेकिन साउथ अफ्रीका का टाइम जो है वो भी आ गया है और मुझे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर है डीकॉक, हेनरिक और मार्करम के साथ पावर आती है, मिडिल ऑर्डर में पावर आती है मिलर, क्लासन और स्टब्स के साथ, और फिर पेस में पावर आती है विद द अटैक ऑफ जैनसन, रबादा एंड नॉटेजे, और फिर उसके बाद पावर आती है शमसी और महाराज के साथ नीचे। तो इसका मतलब है कि ये साउथ अफ्रीका भी बड़ी पावरफुल टीम है और मेरा ख्याल है कि मैं अपने दिल से काम ले रहा हूं, अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का टाइम आ गया है जीतने का टाइटल है जी। तो ये है, ऐसा है। और हमारे जीशान भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, मैं कहती हूँ इंडिया जीतेगा। जी हाँ जी। और जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट कश्माला तलत, 21 इयर्स की हैं, पाकिस्तान से। शी हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू विन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग एट पेरिस 2024। और नहीं सॉरी, अभी जीता नहीं है उन्होंने, उन्होंने जीता है पाकिस्तान के अंदर। तो शी इज एमिंग टू विन इन ओलंपिक्स पेरिस के अंदर 2024 में भी। और ये ओलंपिक्स जो है शुरू होने वाले हैं जुलाई 26 को। ये जो है कम्पीट करेंगी 10 मीटर्स एयर पिस्टल और 25 मीटर्स पिस्टल इवेंट्स के अंदर। तलत जो है उनका ताल्लुक मिलिट्री फैमिली से है एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक शूटिंग। तो वे टू गो जी, वेरी गुड, जीतो जाओ। मैनू तो समझ नहीं आती पठान जड़े ने अखां ते पट्टी बन के परिंदे मारदे ने, उन्होंने तुसी भाई शूटिंग वास्ते क्यों नहीं भेजते हो भाईजान? उन्होंने शूटिंग वास्ते भेजो, वो तो आंखें बंद करके शूटिंग करता है ना, मड़ा टाटा करता है वो।
वो क्रिकेट खेल रहा है
तो उसको आप क्रिकेट से थोड़ों को निकाल को वहां डालो ना, थोड़ा शूटिंग वूटिंग
वाला आता था वो पठान।
हाँ,
कौन उठक तक गुब्बारे वो सामने,
गुब्बारा अभी नहीं पाड़ना
तो
है।
अब वो कहते हैं उसमें पैसे ही नहीं थे।
हाँ, पैसे नहीं है,
पैसे
हाँ, तो इसमें बहुत पैसा आएगा ना अभी। जब ये ओलंपिक मेडल जीत के आएगा हमारा पठान, तो फिर उसके पास बहुत पैसा आएगा ना।
तो मेरे हिसाब से पैसे कमाने का हक सबको है, तो हमारे पठान भाई को भी है। गुब्बारे निशाने डाला के उसमें क्या पैसे?
नहीं तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनके निशाने इतने अच्छे हैं,
निशाने
उनको निशाने जबरदस्त है ना, उनको
शक नहीं।
यार बच्चे होते हैं तो उनके पास बंदूक होती है, तो वो उनके उनसे अच्छा निशाना किसके पास है? तो उनको थोड़ा ग्रूम करो, उनको सिखा दो जाके यार क्या पटाखे पड़ेगा उधर, पटाखे पड़ेगा ना उधर टेरेस में जाके।
हो गया
पाया ना, और कुछ सुनना है जे?
नहीं हो गया,
नहीं और कुछ सुनावा तो
न्यूज खत्म हो गई।
हाँ, न्यूजें खत्म हो गई हैं, लेकिन अगर आपने मेरे से कुछ और सुनना है मैं आपको सुना सकती हूँ।
नहीं, आप इतनी देर से सुना ही रही हैं, और क्या कर रही हैं?
नहीं तीनों नहीं सुनाई है ना,
हर उस पे पता नहीं क्या, दो तीन जगह मैं कुछ मैसेज कर रहा था तो कुछ मुझे लगा किसी ने दो तीन टों की समझ नहीं आती बातें, भूल जाते
हैं,
नौटंकी।
और वो मैंने शुरू में कहा था,
शुरू में भूल गया था।
तेरा ना आमिर किसने रखा, तेरा ना गजनी होना चाहिए। मैंने वो खबरें शुरू करने से पहले तुम्हें ये बातें कही थी।
अब खत्म हो गई
ना? अब खत्म हो गई। अगर कुछ और सुनना है तो मैं सुना।
अब ये थी गर्मा गर्म खबरें, और 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे सिकंदर बख्त, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर। वो आपसे और हमसे बात करेंगे, इंजॉय करेंगे, और 7 से लेकर तकरीबन 8 बजे तक हमारे साथ होंगे। फिर 8 से लेकर 9 तमाम लाइनें खोल देंगे हम। और कल आपको पता क्या है? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका।
आज अमर देखेंगे, अगर उनके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हुई ना तो हम शायद
आज तो उनसे पुरानी उनकी यादें भी पूछेंगे।
पुरानी यादें भी पूछेंगे, हो सकता है कि आज से आगे चला जाए टाइम थोड़ा सा
ना, मतलब कहने का मतलब है वो जितना देखो उनके लिए भी तो
उनके लिए
सुबह के 4 बजे अगर मैं वो 9 तक बैठे हैं तो हम तो हैं यहाँ 9 तक
हम तो हैं।
अगर उनका दिल करा, उनका मूड, हमने थोड़ा उनको गर्मा गर्म कर दिया, उनको यॉर्कर या कोई बाउंसर करा।
नहीं, तुम्हारे वाली बात ही मैं कह रही हूँ कि अगर वो अपनी कोई यादाश्तें भी हमारे साथ करना चाहें, क्योंकि अभी तक तो हम गेम्स पे ही बात कर रहे हैं
ना,
तो हम उनके बोलेंगे कि आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा स्पिल ओवर हो।
स्पिल ओवर ये तो एक टाइम फ्रेम था, ये वो नहीं है, तारीख पे तारीख वाला नहीं है या पत्थर पे लकीर नहीं है। इट्स अ वेरी 770 पे आप मेरे साथ हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं। तो 5-10 मिनट इज नॉट अ बिग डील, मतलब हम 9 बजे तक हैं जनाब, ये अपना ही टाइम है, कहीं और तो नहीं जाता। सड्डा ही टाइम है, पंजाबी बोलना सीख ली ना दिनेश साहब? कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें
भाई जान, आप पंजाबी लैंग्वेज का इतना भी ना करें।
साड्डा पंजाबी का वर्ड नहीं है?
नहीं, बोल कैसे रहे हो साड्डा, ये कैसे है? ये
क्या बोलना होता है? नहीं तो मैंने कहा कि साड़ा ही टाइम है, ये कहा ना मैंने, ये गलत है?
हाँ नहीं, ठीक है,
बिल्कुल ठीक है जनाब। और आपको पता है लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो आप लॉन्ग,
मेरी छुट्टी है मंडे को, मैं बीमार हूँ मंडे को, मैं मंडे को बहुत ज्यादा बीमार हूँ।
अब वो मैंने वो बटन ही तोड़ दिया है, वो आप टाइप करके लिखती थी ना, जिसपे आप टाइप करती थी कि जी आई एम नॉट फीलिंग गुड टूडे नॉट कमिंग बस वो
बटन मैं देख रही हूँ नया मेरा मोबाइल है
वो टाइप ही नहीं हो
रहा बटन कहाँ चले गए वो टाइपिंग से क्यों नहीं हो रही है अच्छा मुझे पता चला तुमने ड्राइव कर दिया
बता दिया था कि
मैं समझी वो अंदर दब गए हैं शायद या क्या हुआ है
मुझे माजिद भाई ने कह दिया था बेटा ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है
ओ माय गॉड
माजिद भाई आपका हुक्म तो सराखों
अच्छा तो उस साजिश के पीछे तुम हो ओ हो
झूठ तो मैं बोलता नहीं मैंने कहा मैं बता दे
और सच कभी नहीं मैंने बोला झूठ मैं कहता नहीं और सच मैंने कभी नहीं बोला
यार मैंने आपको एग्जांपल कल भी दी थी आज फिर दे रहा हूँ क्योंकि मसे ना आपका न्यूज पॉट पढ़ के दिमाग हो गया मोटा कल भी मैंने एग्जांपल दी थी डॉक्टर की
हाँ हाँ डॉक्टर की दी थी
बाहर आता है उसको पता होता है बंदा टपक गया वर्ड यूज देंगे टपक गया फिर भी बाहर आके कहता हमको
उम्मीद रखे कोशिश
तो अंदाजा और तो यार नहीं लेकिन तसल्ली देता है ना तो क्या करता है झूठ नहीं बोलता और सच छुपाता है इस तरीके से ही समझ के मुझे भी लें
अच्छा 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 अच्छा
इससे ज्यादा नहीं
कि
आदमी अगर कुछ बता रहा है तो बस वो
मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे कुछ नशा वशा करना पड़ेगा
नहीं नहीं वैल्सी भी नहीं सुनाई
उसने तो भाई छुईया चलाई है लोगों सारे स्टोर बंद 14 दिन के
लिए कहा जाएंगे आप सोचा आपको नशा भी नहीं मिलेगा
अभी से जमा करके रख लो भाई
अभी से कर लेंगे आप
अभी से रख लो
ऐलान उन्होंने कर दिया
मैं कहाँ सुन रही थी कोई मुझे सुना रहा था कहते हैं जी डॉक्टर ने एक लड़के को मना कर दिया उन्होंने कहा पाजी थोड़ा जिगर सारा हो गया खराब हुण अगर तुहानू किसी ने जबरदस्ती ना की तो तुसी पीना नहीं है बिल्कुल है तो थोड़े दिनों के बाद वो जो है वो एक आदमी साथ फिर रहा तो बीवी ने कहा थोड़ा दिमाग ठीक है तुसी रेस्ट करो तुसी की है बंदा लेता जी नाल लगाया फिर रहे हो कहता है डॉक्टर ने क्या थी जिस समय तक कोई जबरदस्ती ना करे तू पीड़ा नहीं इस में जबरदस्ती करे
क्या बात है जबरदस्त वेरी नाइस ये आपके साथ भी कोई बंदा छुड़वा देता
हूँ बिल्कुल छुड़वाओ यार
वो जबरदस्ती करता रहेगा आप जो है वो
हम टूट रहेंगे
जनाब आप भी जो है अगर कोई डील आपने लेनी है ये तो जा रही है अपने नशे के लिए लेकिन लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो अगर आपने कोई शॉपिंग करनी और अप्लायंसेज लेने तो ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंसेज आपको पता सुल्तान भाई को तो
शैंपेन कलर की
एक उनको तो मौका चाहिए ना वो वैसे ही हर हफ्ते जो है वो सेल लगा देते हैं
बहुत सस्ती चीजें देते हैं कंपेयर टू मार्केट
कनाडा डे का है इवेंट तो आपने जो है ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंसेज के सुल्तान भाई के पास पहुंचना है इनका नंबर है 905-450-2828 901 बुवेट रोड वेस्ट ब्रैम्पटन में सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज से इसके अलावा जनाब हम एक हम ऐड कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आपको और फैमिलीज को मिल सकती है अगर आपकी इनकम $60,000 सालाना से है या इससे कम है और आपके बच्चे की उम्र भी 12 साल के अंदर है तो आप 12,000 से लेके 60,000 तक की ग्रांट जनाब बिल्कुल आपने सही सुना ये लोन नहीं है ये ग्रांट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए शर्त यह है कि आप ऑन्टेरियो अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के रेजिडेंट होना लाजमी है इसके अलावा भी अगर आपने इस ग्रांट के सिलसिले में कोई मालूमात लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं शावेज खान को 6477690241 शावेज खान का नंबर है अगर आपने इस ग्रांट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं आपको लगता है कि आप या आपकी फैमिली या आपके दोस्त यार इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप शावेज खान को फोन कर सकते हैं इसके अलावा हम बता रहे हैं कि जनाब फरहत हाशमी का वेस्टर्न टूर का जो है वेस्टर्न कनाडा का टूर जो है 2024 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है कल से सैटरडे 29 जून से कैलगरी में होंगी उसके बाद फोर्ट मैकमरी में पहुंचेंगी एडमिंटन में होंगी सस्कैटून में होंगी विक्टोरिया में जाएंगी और सरी वैंकूवर में ये तकरीबन आज कल से शुरू होगा सैटरडे 29 जून से और ये इख्तिताम होगा संडे जुलाई 14 को तो अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने शहर के हिसाब से लेनी है तो आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं alhuda institute.ca इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं जा सकते तो आप फोन करके भी मालूमात ले सकते हैं 6473884595 जो है इस नंबर पे आप कॉल करके फरहत हाशमी साहिबा का जो है वो डिटेल ले सकते हैं इसके अलावा जनाब अगर आपको मेरी बातें जो मैं रेडियो पे कर रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रही हैं तो हम आपको कहते हैं जनाब परेशान होने की जरूरत नहीं है हेयर मैक्स के शिराज रहीम के पास जाइए और आप उनको अगर साजो आवाज का रेफरेंस देंगे तो वो आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री करके देंगे। शिराज का नंबर 416-792-8792, 416-792-8792, शिराज रहीम का नंबर है हेयर मैक्स के। इसके अलावा जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि अभी 2-3 मिनट हैं टॉप ऑफ दी अवर में।
एक गाना लगाओ जरा।
अच्छा मैं जो गाना लगाऊंगा ना
प्यारा
है सुन तुम्हें।
नहीं गंदा नहीं,
ये गाना जो है वो जुनेद भाई के लिए।
नहीं,
ये डेडिकेटेड है उनके लिए।
अच्छा
खास वजह से लगा रहा हूँ।
अच्छा
तो जुनेद भाई आप मुझे आई नो यू आर वेरी बिग फैन ऑफ मी, आप जरूर सुन रहे होंगे इसको क्योंकि भाई हमारे। तो जनाब ये गाना जो है यूजुअली तो मैं गाना आपको पता है अपनी बेगम के लिए। देर इज नो
वे के किसी और के लिए।
मैन आई थिंक जुनेद भाई यू आर द सेकंड इन माय लाइफ जिसके लिए मैं गाना मैं लगाने लगा। इस पे भी कभी और बात कर लेंगे कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, लेकिन ये गाना जो है वो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और जिसको ना आए तो भजन फिर
आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं।
आप शिकायत कर दीजिएगा
यार, लेकिन वो टॉप ऑफ द आवर
का वहाँ पर है, ये छोटा गाना है।
अच्छा
टेंशन ना लें, ये गाना जो है वो सुने
स्पेशल उनके लिए,
स्पेशल जो है वो गाना है। और जनाब फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। 416-620-1778 हमारा नंबर है, ये गाना एंजॉय कीजिए। टन टन टन
WTOR 770 AM Youngstown Toronto।
कैनेडा डे का जश्न मनाओ ब्रैम्पटन दे विच, अते एक वड्डे इनफ्लेटिव जोन विच करो उछल कुद, अते एंजॉय करो फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी ते फ्री कॉन्सर्ट होस्टेड बाय जेसी जॉन। अते इत्थे आ रहे ने पंजाबी हिप हॉप आर्टिस्ट इक्की अते इंटरनेशनल श्रीलंकन रैपर MIA। आखिर विच एंजॉय करो रात नूं एक वड्डा फायरवर्क जो की टिम होटन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वधेरे जानकारी लई अज ही विजिट करो brampton.ca/CanadaDay।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktrucklube.com.
अलहुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करते हैं वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरहत हाशमी एंड डॉक्टर इदरीस जुबैर। ये टूर 29th ऑफ जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सरे वैंकूवर पर खत्म होगा। इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 647-388-4595, 647-388-4595। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 647-290-3773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 647-290-3773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर फैमिलीज विद किड्स। अगर आपकी इनकम $60,000 से कम है और आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 से लेकर 60,000 तक की ग्रांट मिल सकती है और ये फंड 3 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑन्टेरियो, अल्बर्टा और BC प्रोविंस के लिए है। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए शावेज 647-769-0241, 647-769-0241।